ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा जारी। सदन में उठे विषयों पर जवाब देने के लिए सरकार को सभामुख देवराज घिमिरे का निर्देश। संविधान की भावना के अनुसार स्वास्थ्य में समान पहुंच सुनिश्चित करने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का जोर। नेकपा एमाले के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप नेपाल का 71 वर्ष की आयु में आज निधन। आज ही किया गया अंतिम संस्कार। और इसराइल गजा युद्ध शुरू होने के बाद से 16,000 से अधिक बच्चों की मौत। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पर विचार विमर्श जारी रहा। विमर्श के दौरान सत्तापक्षीय दलों के सांसदों ने सरकार की नीति तथा कार्यक्रम को सकारात्मक बताते हुए प्रभावकारी बजट की व्यवस्था और उसके क्रियान्वयन करने की बात पर जोर दिया। वहीं प्रतिपक्षी दलों के सांसदों का कहना था कि नीति तथा कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण के लिए मजबूत आधार नहीं दिखाई देते, ये महज पुराने कार्यक्रमों की ही निरंतरता है। बैठक के शुरू में सांसद रंजिता श्रेष्ठ ने पूर्व सांसद रेशम चौधरी को वैशाख 17 को गिरफ्तार किए जाने की घटना की निष्पक्ष छानबीन करने और चौधरी के साथ हुए बर्ताव के लिए सार्वजनिक तौर पर जवाब देने की सरकार से मांग की। इसी तरह विभिन्न सांसदों ने समसामयिक विषय पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। सभामुख देवराज खिमिर ने संसद में विभिन्न समय पर उठे विषयों में जवाब देने के लिए सरकार को रूलिंग की है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में जनमत पार्टी के सांसदों द्वारा पार्टी के संरक्षक रेशम चौधरी को बिना वजह गिरफ्तार कर जेल चालान किए जाने के विषय में सरकार के जवाब की मांग के साथ उठकर विरोध जताए जाने पर सभामुख ने रूलिंग की। बैठक में जनमत पार्टी के सांसद अब्दुल खान ने कहा कि चौधरी की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार के साफ जवाब न देने तक संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। सभामुख घिमिरे ने यह बताते हुए कि इस वैशाख 25 की बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक घटना के विषय में जवाब देंगे। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम ने दीर्घकालीन आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ने जनता में आशा जगाई है और विकास के ढांचे को बदलने का संकल्प लिया है। सांसदों ने कहा कि पिछले नीति तथा कार्यक्रमों में शामिल मुद्दों का क्रियान्वयन न होने से जनता में निराशा पैदा हुई थी, लेकिन अब प्राथमिकता देकर इसे लागू करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार के नीति तथा कार्यक्रम में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, न्यायपूर्ण समाज और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इसका प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही सांसदों ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम में सुशासन को बढ़ावा देने, उच्च आर्थिक वृद्धि और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सदन में चर्चा के दौरान आए सुझावों को सकारात्मक रूप से लेकर संशोधन करने का आग्रह किया। बैठक में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने कहा कि सदन में प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए आगामी बैठक में भी चर्चा जारी रहेगी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक वैशाख 28 रविवार बार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान की भावना के अनुसार आम नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता जताई है। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के 23वें वार्षिकोत्सव समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान द्वारा नेपाली नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की गारंटी दिए जाने के पहलू पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि चिकित्सकों का विदेश जाने का सिलसिला बढ़ना चिंता का विषय है, इसलिए इसे रोकने के लिए संबंधित पक्षों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व मंत्री प्रदीप नेपाल का 71 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। कुछ वर्षों से पार्किंसंस रोग से पीड़ित प्रदीप नेपाल का इलाज के दौरान नर्विक अस्पताल अस्पताल में निधन हो गया। ये जानकारी एमाले के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने दी। प्रदीप नेपाल ने संचार तथा सूचना, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। एमाले की पॉलिट ब्यूरो सदस्य रह चुके प्रदीप नेपाल ने पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में निरंतर लेखन किया था। वे एमाले के प्रचार एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख तथा पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत थे। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेता नेपाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से एशियाई भुगतानी नेटवर्क के 21वें फोरम के सहभागियों ने मुलाकात की। फोन पे द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वाले नेपाल सहित 13 देशों के 14 प्रतिनिधियों के साथ आज प्रधानमंत्री निवास बालोटार में हुई बैठक में सीमा पार खुदरा भुगतानी प्रणाली और डिजिटल वित्त में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल की डिजिटल भुगतानी प्रणाली के विकास और सुधार के महत्व पर जोर देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि पार्टी से ऊपर राष्ट्र को बेहतर बनाना सभी का कर्तव्य है। पार्टी के आर्थिक नीति तथा योजना विभाग द्वारा केंद्रीय कार्यालय सानिपाल ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि दलगत स्वार्थ से अधिक राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कोहलपुर सुरखेत 132 केवी प्रसारण लाइन परियोजना के तहत बांके के बानिया भार क्षेत्र में उत्पन्न विवाद का समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंत्री खड़का ने आज परियोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरी को मंत्रालय बुलाकर विस्तार कार्य के दौरान आई समस्याओं को तुरंत हल करने का निर्देश किया। बांके की बैजनाथ गांव पालिका वार्ड नंबर 4 बानिया भार में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण 3 बिजली टावरों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिससे पूरी योजना में देरी हो रही थी। आज जानकी नवमी सीता जयंती के अवसर पर देशभर में भक्तों ने माता सीता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। रामायण और पुराणों के अनुसार त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक ने यज्ञ के बाद खेत जोतते समय वैशाख शुक्ल नवमी के दिन भूमि से सीता की उत्पत्ति हुई थी। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार श्रीराम की अर्धांगनी बनी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध में अब तक 16,000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 34,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हर दिन 100 से अधिक बच्चों की मौत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों पर हमलों में सैकड़ों बच्चों की जानी गई है। मानवाधिकार संगठनों ने इसराइल से युद्ध अपराधों की जांच की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा जारी। सदन में उठे विषयों पर जवाब देने के लिए सरकार को सभामुख देवराज खेमेरे का निर्देश। संविधान की भावना के अनुसार स्वास्थ्य में समान पहुंच सुनिश्चित करने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने दिया जोर। नेकपा एमाले के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप नेपाल का 71 वर्ष की आयु में आज निधन। आज ही किया गया अंतिम संस्कार। और इसराइल गजा युद्ध शुरू होने के बाद से 16,000 से अधिक बच्चों की मौत, गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।